रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। देश के अर्थतंत्र सुधार के लिए सरकार काम कर रही है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। किसी भी आपराधिक कार्य का अनुसंधान व्यक्ति का चेहरा देखकर नहीं बल्कि तथ्य और प्रमाण के आधार पर होगा, गृहमंत्री रमेश लेखक की प्रतिबद्धता। परंपरागत कार्यशैली में परिवर्तन कर विकास निर्माण को तीव्रता देने की बात पर संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा कुरुंग ने दिया जोर। और भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना पर हुआ आतंकी हमला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के समक्ष नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघ ने देश के अर्थतंत्र सुधार के संबंध में निजी क्षेत्र के साझा सवाल संग्रहित 40 पृष्ठों का अवधारणा पत्र पेश किया। प्रधानमंत्री निवास पलवाटार में आज महासंघ के संयोजक भगीरथ सापकोटा सहित के प्रतिनिधिमंडल ने सुदृढ़ अर्थतंत्र निर्माण का आधार, सबल निजी क्षेत्र और मजबूत पूर्वाधार का लक्ष्य सम्मिलित सुझाव पत्र प्रधानमंत्री ओली को सौंपा। मौके पर प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि सरकार अर्थतंत्र सुधार के लिए योजनाबद्ध काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि उद्योगी व्यवसायियों को उत्पादन और उत्पादकत्व की वृद्धि में अपने स्थान से काम करने की जरूरत है। गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति अपनाने की बात पर सरकार स्पष्ट और दृढ़ है। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत की राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति की आज की बैठक में गृहमंत्री लेखक ने यह बात कही। इस बात का जिक्र करते हुए कि भ्रष्टाचार को निर्मूल करने को लेकर सरकार स्पष्ट है, उन्होंने कहा कि इस नीति को क्रियान्वित करने के लिए कानून और विधेयक प्रस्तुत हुए हैं। गृहमंत्री लेखक ने संसद में प्रस्तुत विधेयक का जल्द से जल्द समिति से निराकरण करके आने वाले अधिवेशन में प्रस्तुत कर पूर्णता देने के हिसाब से काम करने का समिति से आग्रह भी किया। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी अपराध का अनुसंधान व्यक्ति का चेहरा देखकर नहीं बल्कि तथ्य और प्रमाण के आधार पर होगा। मौके पर अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राय ने कहा कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण अख्तियार अकेले नहीं कर सकता, इसके लिए सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। समिति में विमर्श में रहे अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग और भ्रष्टाचार निवारण संबंधी आईन को संशोधित करने वाले विधेयकों को समय पर ही पास करने के हिसाब से विचार विमर्श को आगे बढ़ाने की बात पर सांसदों ने जोर दिया। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाशमान सिंह ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता के लिए मौजूदा सरकार का गठन हुआ है। आज नेपाली कांग्रेस चितवन द्वारा आयोजित दीपावली विशेष कार्यक्रम के दौरान गृहमंत्री लेखक ने कहा कि देश में राजनीतिक स्थिरता बहाल करके जल्द ही जनता की समस्याओं को संबोधित करने के लिए वर्तमान सरकार काम कर रही है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि परंपरागत कार्यशैली को परिवर्तित किए बिना विकास निर्माण को तीव्रता मिल पाना मुश्किल है। मंत्रालय की प्रथम त्रैमासिक प्रगति समीक्षा एवं मंत्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समिति की आज की बैठक में मंत्री गुरुंग ने यह बात कही। उन्होंने संचार मंत्रालय माथत के निकायों को पारदर्शी, व्यावहारिक और कानून सम्मत ढंग से कार्य संपादन करने का निर्देश किया। ये बताते हुए कि सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय करके काम किया जाना चाहिए। मंत्री गुरुंग ने कहा कि कम से कम एक साल तक कर्मचारी का तबादला नहीं होना चाहिए। बता दें कि संचार मंत्रालय माथत के निकायों में से रेडियो नेपाल कार्य संपादन के मामले में उत्कृष्ट घोषित हुआ है। सल्यान में मिनी ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि अन्य 8 लोग घायल हुए हैं। ये जानकारी जिले की कपूरकोट गांवपालिका के अध्यक्ष दुर्गा पुन ने दी। मरने वालों में स्थानीय 14 वर्षीय गोवर्धन खड़का, 12 वर्षीय दिल्ली उर्फ अनिल भंडारी, 15 वर्षीय सृजना वसनेत शामिल हैं। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय सल्यान के सूचना अधिकारी इंस्पेक्टर रेशम बहादुर खत्री ने दी। घायल सभी को इलाज के लिए राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर ले जाया गया है। घायलों में से कुछ की हालत गंभीर बताई गई है। बता दें कि मिनी ट्रक सड़क से करीब 150 मीटर नीचे खाई में जा गिरी थी। हादसे की वजह अब तक पता नहीं चल पाई है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबू, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजी।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजी।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो, हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसीको डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। न्याय परिषद ने 31 जिलों में मुख्य निर्वाचन अधिकृतों की सिफारिश निर्वाचन आयोग से की है। परिषद ने आगामी मार्गशीर्ष 16 गते होने वाले उपनिर्वाचन के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकृत और निर्वाचन अधिकृतों की सिफारिश की है। परिषद ने उपभोक्ता अदालत के न्यायाधीश पद पर जिला अदालत काठमांडू के न्यायाधीश रामचंद्र शर्मा और सदस्य पद पर गहेन्द्र राज रेग्मी की सिफारिश की है। इसी तरह 6 स्थानीय तहों में निर्वाचन अधिकृत घटाने की भी परिषद ने सिफारिश की है। इस साल भैया दूज का मुहूर्त कार्तिक 18 गते रविवार सुबह 11:37 बताया गया है। नेपाल पंचांग निर्णायक विकास समिति की आज की बैठक ने मुहूर्त के विषय में निर्णय किया है। ये जानकारी समिति के कार्यकारी निदेशक सूर्य प्रसाद ढुंगेल ने दी। समिति के अनुसार पश्चिम मोहड़ा करके भाई को टीका लगाना चाहिए। नेवार समुदाय द्वारा मनाई जाने वाली कीजा पूजा भी उसी दिन की जाएगी। इस साल का तिहार यानी यम पंचक कार्तिक 13 गते मंगलवार से शुरू हो रहा है। मंगलवार धन त्रयोदशी यानी धनतेरस पर्व मनाया जाएगा, लेकिन यमदीप दान कार्तिक 14 गते बुधवार किया जाएगा। काग तिहार भी बुधवार को ही मनाया जाएगा, ये जानकारी समिति ने दी। आयुर्वेद के प्रवर्तक धन्वंतरी की जयंती भी बुधवार को ही मनाई जाएगी। कुकुर तिहार, नरक निवारण चतुर्दशी, दीप मालिका और लक्ष्मी पूजा कार्तिक 15 गते गुरुवार को मनाई जाएगी। कार्तिक 17 गते शनिवार गाय पूजा, गोवर्धन पूजा, बलि पूजा, हलि तिहार, महापूजा और नेपाल संबत 1145 प्रारंभ होगा। इसी तरह कार्तिक 22 गते गुरुवार छठ पर्व पड़ा है, ये जानकारी समिति ने दी। रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति रेडियो नेपाल के कार्यकारी निदेशक अमर ध्वज लामा ने कहा कि नेपाली गीत संगीत की श्री वृद्धि में रेडियो नेपाल हमेशा आगे रहेगा। तिहार, नेपाल संवत और छठ पर्व के अवसर पर रेडियो नेपाल द्वारा आज सिंहदरबार में आयोजित पर्व विशेष धुनों की प्रस्तुति में कार्यकारी निदेशक लामा ने कहा कि आगामी दिनों में नेपाली समुदाय में प्रचलित सभी त्योहारों की धुनों का निर्माण कर सभी समुदायों की अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। कार्यक्रम में नायब कार्यकारी निदेशक चंद्रभूषण लाल दास ने कहा कि आगामी दिनों में भी विभिन्न त्योहारों के अवसर पर रेडियो नेपाल संगीतमय प्रस्तुतियां देगा। कार्यक्रम में मंगल धुन, देवसी, नेपाल संबत, छठ और भैलो धुन सहित विशेष त्योहार धुनें प्रस्तुत की गईं। आज प्रस्तुत धुनों को रेडियो नेपाल के यूट्यूब चैनल पर देखा और सुना जा सकता है। कैलाली के टीकापुर विमानस्थल पर आज परीक्षण उड़ान की गई। 38 वर्षों के बाद टीकापुर नगरपालिका वार्ड नंबर 1 स्थित बस पार्क के पास टीकापुर विमानस्थल पर परीक्षण उड़ान की गई। टीकापुर विमानस्थल पर आज नेपाल वायु सेवा निगम और तारा एयर के विमान की परीक्षण उड़ान की गई। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री अरुण कुमार चौधरी ने कहा कि तिहार के बाद नियमित उड़ानें संचालित की जाएंगी। दिवंगत गृह मंत्री खड़ग बहादुर सिंह ने विक्रम संवत 2041 में विमानस्थल को संचालन में लाया था। 3 वर्षों तक नियमित संचालन में आने के बाद विमानस्थल पर विक्रम संवत 2052 के बाद द्वंद्वकाल शुरू होने के साथ नियमित विमान सेवा बंद कर दी गई थी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर के अखनूर में आज भारतीय सेना पर हमला हुआ है। इसके बाद सेना और चरमपंथियों के बीच मुठभेड़ हुई। सेना के व्हाइट नाइट कोर ने कहा एक आतंकी का शव हथियार के साथ बरामद किया है, ऑपरेशन जारी है। व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि चरमपंथियों ने सुंदर बनी में सेना के काफिले पर गोलियां चलाई हैं। व्हाइट नाइट कोर ने कहा कि उनके सैनिकों ने तुरंत जवाब दिया और हमले को विफल किया, कोई घायल नहीं हुआ है। आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। हाल ही में गुलमर्ग इलाके में भी सेना के वाहन पर हमला हुआ था, हमले में 2 सैनिकों की मौत हो गई थी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के अर्थतंत्र सुधार के लिए सरकार काम कर रही है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। किसी भी आपराधिक कार्य का अनुसंधान व्यक्ति का चेहरा देखकर नहीं बल्कि तथ्य और प्रमाण के आधार पर होगा, गृहमंत्री रमेश लेखक की प्रतिबद्धता। परंपरागत कार्यशैली में परिवर्तन कर विकास निर्माण को तीव्रता देने की बात पर संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने दिया जोर। और भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना पर हुआ आतंकी हमला। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।